नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की राजकीय यात्रा पर इजराइल रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इजराइल की उनकी दो दिन की राजकीय यात्रा से दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध और मजबूत होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और दोनों देशों के लिए एक लचीले, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि ये वार्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर केंद्रित होगी। श्री मोदी ने कहा कि वे पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल की दो दिन की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। भारत और इजराइल ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों, उनके समर्थकों, प्रायोजकों, वित्त पोषकों और मददगारों से निपटने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल नई दिल्ली में आयोजित भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह JWG की आतंकरोधी 10वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंक का मुकाबला करने के लिए लगातार, व्यापक और समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। एक रिपोर्ट।
इस बैठक में भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों से संयुक्त रूप से लड़ने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के साथ अन्य हालिया हमलों की भी निंदा की। उन्होंने आतंकवादी भर्ती, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग, आतंकवाद वित्त पोषण और आतंकी गतिविधियों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और AI के बढ़ते उपयोग जैसे उभरते खतरों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक इजराइल में आयोजित करने का निर्णय लिया। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंची। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन करेंगी। ये मेला आयुष मंत्रालय ने बुलढाणा जिले के शेगांव में आयोजित किया है। वे राज्य स्तरीय पहल एकता और विश्वास के जरिए महाराष्ट्र का स्वर्ण युग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगी। इसका आयोजन नागपुर में ब्रह्म कुमारी समाज ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी कि आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। समिति ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित सिविल एनक्लेव के विकास को भी अपनी स्वीकृति दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हाल ही में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं के बीच चार्टर विमानों के संचालकों के लिए नए कड़े सुरक्षा निर्देशों की घोषणा की है। कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला किया गया। DGCA ने कहा है कि चार्टर और VIP उड़ानों सहित सभी गैर अधिसूचित उड़ानों के बारे में सुरक्षा के आधार पर कमांडर फ्लाइट का फैसला अंतिम होगा। DGCA सुरक्षा रैंकिंग, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डाटा ऑडिट की भी शुरुआत करेगा। सिस्टम में किसी भी तरह की खामी के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि का 31 मार्च तक 100% उपयोग सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल, पूर्ण और बगैर किसी शर्त युद्ध विराम के आह्वान का प्रस्ताव पारित कर दिया है। 193 सदस्यीय महासभा में 107 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में और 12 ने विरोध में मतदान किया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।